نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی کے اگلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پیچھے ہم نے جس چیز کو پورا کیا وہ اللہ کے نبی کا سفر ہجرت تھا. ہم نے دیکھا کہ کتنے مشکل مرحلوں سے گزرتے ہوئے لیکن بظاہر مطمئن اللہ کے فیصلوں پہ راضی وہ مکہ سے مدینہ کے سفر کو عافیت سے گزارتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. راستے کے کچھ واقعات بھی ہم نے دیکھے کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہوا کہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہیں چھک سکتا. بہت سارے دشمن تھے اس وقت بھی آپ کے, آج بھی اگر ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ جب اپنے نبی کا اور اپنے نبی کی امت کا دفاع کرنا چاہتا ہے تو کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آج ہم دیکھیں گے کہ قبا میں تشریف آوری, ایک طویل سفر کو طے کرنے کے بعد, تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا اور سوموار یعنی منڈے پیر 8 ربیع الاول 14 نبوی جس کو اب آپ 1 یعنی 1 ہجری کہہ سکتے ہیں, اللہ کے نبی قبا میں تشریف لائے. قبا کیا ہے؟ مدینہ سے تھوڑی سی باہر ایک چھوٹی سی بستی تھی. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہاں آپ کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی. لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ آپ مکہ سے نکل چکے ہیں تو راستے میں ہیں, تو بالکل ایک ایسے مہمان کی آمد کے منتظر ہوتے ہوئے کہ جس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو. وہ روز صبح اٹھتے ہی حرہ کے مقام پر آ کر بیٹھ جاتے, راستہ دیکھتے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو چشمے بھرا ہیں, ہم تو آپ کے راستے میں پلکے بچھائے ہوئے ہیں, محبت کے ساتھ بیٹھتے اور جب دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹتے. ایک دن بہت انتظار کے بعد جب واپس پلٹے تو ایک یہودی جو کہ اپنے کسی قلعے کے اوپر کھڑا کچھ دیکھ رہا تھا, دور سے اس نے اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا. یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کیسے انتظام کرتا ہے اپنے راستے میں نکلنے والوں کے. اتنے دن کا سفر, گرمی, گندگی, پسینہ, بو آ سکتی تھی, اللہ نے راستے میں ہی انتظام کر دیا کہ صحابی نے جو کہ زبیر بن عوام تجارت سے آ رہے تھے, نئے نکول سفید کپڑے پیش کیے اور اللہ کے نبی نے وہ پہن لیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب لمبے سفر سے بھی آئیں تو کوئی اپنی شکل حال حلیے سے اگلے کو یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ ہم بہت دکھی ہیں اور ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, بلکہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے. ہم بعض دفعہ اپنے حال حلیے سے اپنی قسم پرسی اور اپنی بیچارگی اور پسماندگی کا اظہار کرتے ہیں تو ہر ممکن حد دوسروں کے سامنے مہذب طریقے سے آئیے. پسینے میں, گندے کپڑوں میں, کچلے مچلے کپڑوں میں آنا انسان کی عزت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف دیا اس کے خلاف ہے. بہرحال اس نے اللہ کے نبی کو جب دیکھا اس کو تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی, آواز خود بخود اس کے منہ سے نکل گئی کہ عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. ان کو انتظار نہیں تھا, ان کو تو دھڑکا تھا, لیکن وہ کام ہو گیا جو ہونا تھا. اللہ کے نبی کے آنے کی خبر سن کر خوشی خوشی نکلے. ہتھیار اٹھا کے نکلنا ان کا ایک شعار تھا, جیسے 12 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے آج کے دور میں, تو یہ ایک قسم کی اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے آنے کی خبر سن کر خوشی, ان کے شور, ان کے ایکسائٹمنٹ اور ان کے بھاگ دوڑ کرنے سے ثابت ہو رہی تھی. اللہ اکبر یعنی تکبیر کی آوازیں سنی گئیں, حرہ کی طرف لوگ آ گئے اور پھر وہاں آپ سے ملاقات ہوئی. آپ پھر رائٹ سائڈ کی طرف مڑے اور قبا میں بنی عمر بن عوف میں آپ نے قیام فرمایا. قبا میں اترنے کے بعد آپ خاموش بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے آپ سیکھیے کہ ایکسائٹمنٹ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. بعض دفعہ آپ خود بھی بہت خوش ہوتے ہیں, آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, پرجوش ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھے شور مچا دیں, اچھلے, ہاں ہاں یہ بھی یہ بھی. کبھی آپ نوٹ کریں جب کوئی آتا ہے ہمارے گھروں میں خاص طور پہ پاکستان سے, یا اللہ کی پناہ ہم پاکستان چلے جائیں, کئی دن تک تو آواز بیٹھی رہتی ہے باتیں کر کے, شور غل ہا ہو ہرا, ایسے لگتا ہے کہ اندر جگہ کوئی نہیں ہے تو بس سارا جوش ہمارا باہر ابل آتا ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کو سکون سے لیتا ہے, جذب. آپ خاموش بیٹھ گئے, کوئی شور نہیں. اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا ہوا تھا وہ ابو بکر کو رسول سمجھتا. دیکھیے یہاں ابو بکر کی شان دیکھیں, ہر جگہ ایکٹیو ہے, اللہ کے نبی کا ساتھ دینے میں, سفر میں بھی بیٹھے رہے. ہم ہوتے تو دوپٹہ سر پہ باندھ کے بیٹھے ہوتے, بھائی اب مجھے کوئی نہ بلاؤ, मैं बड़ा सफ़र करके आई हूँ, बहुत थक गई हूँ, सर में दर्द है, सोई नहीं रातों में, ऐसे चलते रहे कमर नहीं। अबू बकर सबको मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी खामोश है, तो लोग समझ लेते हैं कि अबू बकर नबी हैं, क्योंकि देखा हुआ तो नहीं था ना। और इससे एक लीडर की ग्रेस और उसकी खुदी का भी तस्करा मिलता है। अब अबू बकर को ही वो रसूल समझते क्योंकि इनके बालों में थोड़ी सी सफ़ेदी थी। जब अल्लाह के नबी पर धूप आ गई और अबू बकर ने चादर तान कर आप पर साया किया, तब लोगों ने पहचाना कि ये अल्लाह के नबी हैं। यानी अबू बकर इस पे कोई तकब्बुर में भी नहीं चले गए कि मैं बड़ा हूँ, जब आपने देखा अल्लाह के नबी को आपकी ज़रूरत है तो आप पे चादर तानी, यानी ज़रा सी आपकी खिदमत करने लगे, तो लोगों को फिर उससे पता चल गया कि नहीं, अबू बकर वो नहीं, ये हैं। बहरहाल ये तो एक बात है जो है। कुबा में अल्लाह के नबी कुलसुम बिन हदम या साद बिन हैसमा के घर पर क्याम फरमाते हैं, 4 दिन वहाँ ठहरे और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और इसमें नमाज पढ़ी। यहाँ से देखिए कि किसी भी नई जगह जाएं तो सबसे पहले मुसलमानों का मरकज़, मरकज़ के बगैर काम नहीं होता। आज मस्जिद का लफ्ज़ सुन के हमारे जहन में आता है वो मस्जिद जो 5 दफ़ा दिन में खुलती है और नमाज के 15 मिनट बाद बंद कर दी जाती है, मस्जिद ये नहीं होती। मस्जिद एक मुसलमानों का मीटिंग पॉइंट भी होता है और इल्म की जगह भी होती है, मुशावरत भी होती है, वहाँ खुशी गम में लोग जमा भी होते थे। तो जब तक मुसलमानों का किसी जगह पे अपना कोई मुकाम ना हो, उस वक़्त तक वहाँ काम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेसी, रात दिन सुबह शाम का आना जाना, बैठना, बातें करना, हर जगह ये नहीं। और ये चीज़ हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि जब हमारे पास अपनी ये जगह नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी हमारे पास जगह थी, किराए की थी जो थी, लेकिन हम उसको शाम में नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, बाज़ दफ़ा भगदड़ मच जाती है। अभी हम लोग लंदन में जो नया नया सिलसिला शुरू हुआ है तो उसमें भी हम यही देखते हैं, कई काम होते हैं लेकिन फ़ौरन जगह खाली करनी पड़ती है। तो आप लोग दिल की गहराई से दुआ करें कि जिस तरह अल्लाह ने आप लोगों के लिए यहाँ इंतज़ाम किया, अब बाकी जगह जहाँ भी दीन का काम हो रहा है अल्लाह वहाँ भी इस तरह की जगह दे ताकि सुकून के साथ काम हो। ये काम कोई जगह इसलिए नहीं होती कि हम इसकी बुनियाद पे बड़े बनते फिरें और लोगों पे फ़ख्र जताएं, लेकिन बहरहाल ये है कि आप अभी देखेंगे कि कुबा में भी आपने एक जगह कायम की और इसी तरह फिर आगे मदीना में जाएंगे तो वहाँ भी आपने जगह कायम की, नमाजें भी पढ़ा के उसको आबाद भी कर दिया। 5वां दिन था तो जुमे का दिन था। अब आप यहाँ नोट कीजिए, अभी मुसलमान फर्स्ट डेट बना रहे हैं। यहाँ आपको इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा दिखाती हूँ ताकि आपका ये हिसाब समझो कि मदीना क्या है, फर्स्ट मुस्लिम स्टेट। कोई मुस्लिम मुल्क कैसा होना चाहिए, मदीना एक रोल मॉडल है। जब कोई मुल्क आज़ाद हो या उसको बनाया जाए तो वहां करने के काम क्या है, ये अब आप इधर से अपने जहन में खुद लिखते जाएं। हमने भी आज से कोई 63-64 ईयर्स पहले एक जगह बनाई थी, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद हमें क्या करना चाहिए था और अब तक क्या कुछ हो जाना चाहिए था, आप मदीना की हिस्ट्री से समझिए। इस्लाम के नाम पर बनने वाली पहली मुस्लिम स्टेट मदीना तैयबा थी कि जहाँ अल्लाह के नबी को अब आज़ादी हो रही है, वहाँ आपकी हैसियत अब एक लीडर की बनने वाली है, आप एक मुस्लिम हुक्मरान हैं, आज़ादी से यहाँ नमाज़ें पढ़ी जाएंगी। अब आप देखते जाएं, इस पे आगे जाके थोड़ा सा जब आप सुन लेंगे तो फिर बात कर लेंगे कि आपने वहाँ मस्जिद की क्याम किया, अब बाकायदा 5 वक्त की नमाज़ हुआ करेगी। जुमे का दिन आया तो जुमा फ़र्ज़ हो चुका था, अल्लाह के हुक्म से आप सवार हुए, अबू बकर आपके पीछे थे। आपने अपने ननिहाल बनु नज्जार के पास पैगाम भिजवाया, वो लोग तलवारें हमाइल किए हाजिर हुए। आपको याद है ना कि अल्लाह के नबी की वालदा मदीना से थी। जब वो सब आ गए तो आपने उनके साथ मदीना की जानिब कूच किया, बनु सालम बिन औफ की बस्ती में पहुंचे तो जुमे का वक्त हो गया। फिर आपने वहीं बतने वादी में जुमे की नमाज पढ़ाई जिसमें 100 आदमी शरीक थे। देखिए पहली नमाज हो रही है जुमे की मुसलमानों की और माशाल्लाह 100 लोग जमा हो गए। यहाँ से आप अब देखिए कि इस्लाम को क्या अरूज मिल रहा है। बस अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था, मदीना में दाखला। जुमे के बाद मदीने का रुख किया, इस वक्त लोग इस्तकबाल के लिए उमट पड़े, घर और गली कूचे हमदो तस्बीह से गूंज रहे थे और औरतें और बच्चे बच्चियाँ निकल निकल कर कह रही थी। इसका तर्जमा पहले मेरे से सुन ले ताकि जब आप इस नशीद को सुने तो आपको अंदाजा हो कि मदीना वाले कितने खुश थे अल्लाह के नबी के आने पे और कितने एक्साइटेड थे। शेर है, इनका तर्जमा क्या है, हम पर मदीना के अतराफ से 14वीं का चांद तुलू हुआ है। किसको कह रहे हैं 14वीं का चांद? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब तक अल्लाह को पुकारने वाला पुकारे हम पर शुक्र वाजिब है। क्या पता चला कि इस नबी के आने का हक कैसे अदा करें? शुक्र करके। और ऐ हम में भेजे गए नबी, आप वाजिबुल अतात दीन लेकर आए हैं। यानी अब आपसे बातें प्यार मोहब्बत की तो करनी है, लेकिन जो बात आप कहेंगे उसकी इतात भी करनी है। आइए सुनते हैं। ये जो आवाज़ है ये दफ की है।
وجب الشكر علي ما دعا لله. وسلم.
اب آپ دیکھیے کہ یہ بہت معروف ایک یعنی ہے، آپ کو تقریباً سیرت کی ہر کتاب میں اس کا تذکرہ ملے گا. الفاظ تھوڑے مختلف ہیں لیکن ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ضعف ہے. اب یہ ساری باتیں آپ کو بتائی بھی جاتی ہیں، پھر اس کی آخر میں سند بتائی جاتی ہے، کیونکہ جب بھی کہیں کوئی چیز آپ پڑھیں سنیں تو آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر یہ چیز ٹھیک ہے، صحیح حدیث سے ہے تو ہم مانتے ہیں، نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں جو الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ آنے پر لوگوں نے جو بولے تھے وہ کیا تھے، جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ، یعنی خوشی سے انہوں نے یہ کہا آگے اللہ کے نبی آگے اللہ کے نبی. اسی طرح یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے تو عورتیں اور مرد اپنے گھروں کی چھتوں پہ آگے، اور ان کے بچے اور ان کے جو غلام تھے وہ راستوں میں اس طرح کتارے بنا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7707 نمبر کی. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہاں سے دونوں چیزوں کو ملا لیں تو ان کی خوشی کا اظہار تو ہوتا ہے. ایک ایک لفظ سنتے ہوئے ایک تو آپ کو لگا ہوگا کہ کتنی محبت ہے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کیا کہتے کہ اللہ کے نبی تعداد اور سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہ، یعنی آفر کرتے کہ آپ ہمارے پاس رہیں، ہم آپ کا سارا خیال کریں گے، تشریف لائیے. مگر آپ فرماتے کہ میری راہ چھوڑ دو، میری یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے. یہاں بھی اب نوٹ کیجئے، ہر بندہ اللہ کے نبی کو اپنا مہمان بنانے کا منتظر ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں وہیں رکوں گا جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا. اونٹنی ایک ایسی جگہ پہ بیٹھی پھر کھڑی ہو گئی جس جگہ پہ آج مسجد نبوی ہے. اللہ کے نبی نے اس جگہ کو خریدا، دو یتیم بچے تھے ان سے لیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں، آپ نے کہا نہیں میں اس کے پیسے دوں گا. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت عمل تھا. اگر پہلے ہی دن اس بنیاد پر اللہ کے نبی ایک یتیم بچوں کی زمین لے کے اس پہ مسجد بنا دیتے تو یہ رسم ہی ڈل جانی تھی کہ مسلمان جس علاقے کو فتح کریں وہاں کی جگہوں کو جا کر زبردستی اپنے لیے دینی اداروں میں یا مسجدوں میں بدل لیں. آپ نے پیسے دیے اور اس کے بعد اس جگہ کو ان سے خریدا اور اس کے بعد وہاں پہ مسجد نبوی بنائی. لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ باقی تھا کہ اللہ کے نبی کہاں رہیں گے. بڑے بڑے سردار آپ کے راستہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں بھی آپ آ جائیں. انہی لوگوں میں ایک غریب صحابی تھے، ابو ایوب الانصاری. دل کے اندر چپکے چپکے سوچ رہے تھے اور بیوی سے بھی کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی میرے مہمان بنے. تو بیوی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کیسے آئیں گے، وہ تو سردار ہیں، تو بڑے بڑے سردار اور لیڈر ان کا راستہ دیکھ رہے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے اپنا معاملہ اللہ پہ ڈالا ہوا تھا، اونٹنی جس جگہ سے بیٹھی پھر اٹھی پھر تھوڑا آگے گئی اور ابو ایوب الانصاری کے گھر کے آگے بیٹھ گئی. گویا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اخلاص کے ساتھ جب کوئی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کے کام کا موقع دیتا ہے. ابو ایوب الانصاری کے لیے یہ بہت خوشی کا موقع تھا. آپ نے خوشی خوشی اللہ کے نبی کا کجاوہ اٹھایا، اپنے گھر لے گئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی جہاں جس پہ بیٹھ کے سفر کیا جاتا ہے. خیر اسد بن زرارہ جو ایک سردار تھے اور آپ نے بھی پیچھے سنا کہ وہ اول اول لوگوں میں تھے جنہوں نے دین کا کام مدینہ میں شروع کیا، انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے کہ مطلب کہ اونٹنی تو میں لے جاتا ہوں اور آپ ادھر ہی رہیں. اسی طرح سب لوگوں نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی. کہتے ہیں کہ روزانہ کئی کئی لگن پہنچتے کھانے کے. یہ بات تو میں بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں. کہیں چلے جائیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کھانا ہم نے کھلانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، دس اینڈ دیٹ. اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی رات ایسی نہ تھی کہ آپ کے دروازے پر تین چار لگن حاضر نہ ہو. اسے کیا پتہ چلتا ہے، محبت. ان کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ اس کے ہاتھ کے لقمے کھا لیں. ابو الایوب انصاری جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ دن رہے. اس دوران ابو ایوب الانصاری کی جو خوشی اور محبت تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کے رہنے کے لیے اوپر کا حجرا رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں میں نیچے رہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ دوسرے مہمان آتے ہیں ملنا جلنا آسان ہے اور اوپر چڑھنا ذرا مشکل ہوگا. پہلے دن تو ابو ایوب انصاری نہیں بولے اور اللہ کے نبی کو نیچے ہی رکھا. ان کی بیوی گواہی دیتی ہیں کہ ساری رات ابو ایوب انصاری گھر کی چھت کے بیچ میں نہیں چلے، کناروں پہ چلتے تھے کہ میرا دل گھبرا نہیں کر رہا کہ اللہ کا نبی نیچے اور میں اوپر ہوں. اور گھبراہٹ میں جیسے بندہ ذرا کانشیس ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ گھڑے سے پانی لینے لگے تو گھڑا گر گیا अब वो पानी क्या कच्ची छत थी, वो टपक के नीचे आ गया। घबराहट में रात गुजारी। अगले दिन आगे का अल्लाह के नबी, मैं ये गुवारा नहीं कर सकता कि आप नीचे और मैं ऊपर। अब देखिए कि इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं, हम कहे कि हम टॉप फ्लोर पे हैं तो हम सबसे ऊंचे हैं और नीचे नहीं, लेकिन दिल नहीं मानता ना, ये दीन अदब का दीन है। तो खैर, अल्लाह के नबी ने फिर उनकी ख्वाहिश पे अमल किया तो आप ऊपर तशरीफ़ ले गए और अबू अय्यूब नीचे रहे। कहते हैं कि इनकी मोहब्बत इतनी थी अल्लाह के नबी से कि खाना जब इनको बनाकर भेजते अल्लाह के नबी को, और कहते आपको जितना जो खाना खा लें, फिर बाद में जब वो खाना आता, और अरबों में रिवाज है कि एक ही सीनी में खाना खाते हैं, सभी उसमें खाते हैं, कोई झूठ मीट का हमारे वाला रिवाज नहीं कि सगे भाई का नहीं खाता कोई, बहन भाई का नहीं खाती, और अपने ही हाथ लग जाए तो बच्चे कहते हैं कि अब इसको फेंक के दूसरा दे दें, सब खाते थे। तो उनकी बीवी कहती है कि अबू अय्यूब अंसारी उस बचे हुए खाने में जगह ढूंढते कि कहाँ अल्लाह के नबी की उंगलियों के निशान है, और वहाँ से टटोल टटोल के अपने हाथों को वहाँ रखते और वहाँ से खाना खाते। एक दिन अबू अय्यूब अंसारी ने खाना भेजा तो लगन ऐसे कैसा वापस आ गया, अल्लाह के नबी ने नहीं खाया। आप परेशान हुए कि पता नहीं आप नाराज़ हैं या क्या हुआ है। बाद में आपने बताया कि खाने में कच्ची लहसुन थी, और जहाँ यानी लहसुन होती है फरिश्ते नहीं आते, यानी इनकी स्मेल बू देती है, और नबी चूँकि वही का मामला किसी वक़्त भी जिब्राई ला सकते थे, तो फिर आपने मना किया कि जब कोई मस्जिद में आए तो वो कच्ची लहसुन और प्याज ना खाए, क्योंकि नमाजियों को भी तकलीफ़ होती है, और ज़ाहिर है कि नमाज़ में बंदे की अल्लाह ताला से बातचीत हो रही होती है। तो बहरहाल बड़ी खूबसूरत बातें मिलती हैं। एक रिवायत शेयर करती हूँ, मुसनद अहमद की, 23516 नंबर की है, अबू अय्यूब अंसारी रावी हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अब घर आते क्या कर रहे हैं, हम किसी के घर जाएं तो जो गप्पे मारते और ये और अगली पिछली गीपते और पता नहीं क्या कुछ करते होंगे। अल्लाह के नबी ने उनको आते ही क्या कहा, क्या मैं आपको कुछ तालीम ना दूं? नोट करें इस बात को, मेज़बान का हक है कि मेहमान उसको दीनी तबलीग करे, दीन की बात सिखाए। बाज़ दफ़ा हम उनके हाथों के खाने खाते, चाय पीते, मज़े उड़ाते, ये क्या अब क्या, उधर जाओ उधर जाओ, वो वक्त ही नहीं मिला उनसे कोई दीन की बात करते, बता ही नहीं सके क्लास क्या। कितने लोग हैं यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान, जाएंगे बस ये करेंगे वो करेंगे, आए तो फिर आधी बातें की होती हैं, वक्त ही नहीं मिला उस्ताज़ा, बिजली कोई नहीं थी, पानी कोई नहीं था। और कई लोग माशाल्लाह बहुत काम करके भी आते हैं, बीज लगाते हैं, बाद में काम फूट जाता है। तो हमेशा हरीस रहें, यहाँ या बाहर कहीं भी जाएं, किसी घर में वीकेंड पे जाएं, अपने रिश्तेदार दोस्त, थोड़ा सा वक्त पहले से रख के जाएं कि मैंने उसको दीन की कोई बात सिखानी है। खैर, कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं, तो आपने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त ये कलेमात कहे, आप भी दोहरा ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, ये कहे तो अल्लाह ताला इसके बदले इसके लिए 10 नेकियां लिखेगा, 10 गुना माफ़ फरमा देगा, और 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर होगा। और शाम को ये कलेमात इसके लिए शैतान से बचाव की ढाल बन जाएंगे, और जो शख्स शाम के वक्त ये कलेमात कह ले तो इसका भी यही हुक्म है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लम जो थे मदीना में रहे, जैद बिन हारिसा और अबू राफे को आपने मक्का भेजा। वो अल्लाह के नबी की दोनों साहबजादियों हज़रत फ़ातिमा और उम्मे कुलसूम, और साथ ही साथ हज़रत सौदा और उम्मे ऐमन और उसामा बिन जैद को साथ लाए। ये वो लोग तो जब भी पीछे ही थे, इनके साथ अब्दुल्ला बिन अबी बकर भी, अबू बकर के याल यानी उम्मे रोमान, हज़रत आयशा की वालदा थी ये, हज़रत आयशा और असमा को लेकर आए। ये नबी सल्लम की हिजरत के 6 माह बाद का वाक़ है। तो क्या पता चला कि आपके घर वाले और अबू बकर के घर वाले आपसे 6 माह बाद मदीना में आए। ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, घर थोड़े से अलग होते हैं, घर वालों को कभी इधर, शौहर को इधर, बीवी को इधर, ये सब कुछ होगा फिर दीन फैलेगा। बहरहाल हज़रत सुहैब नाम के एक शख्स की हिजरत का किस्सा पढ़ते हैं कि इन्होंने भी अल्लाह के नबी के बाद हिजरत की। उन्होंने जब हिजरत का इरादा किया तो मुशरिकीन ने इनको रोक लिया। इनके पास बहुत सारा माल था, रोम से आए हुए थे, तो रोम उस वक्त का एक बहुत अमीर मुल्क था। माल से दस्तबरदार हो गए तो मुशरिकीन ने इनकी राह छोड़ दी। सोचिए ज़रा, आप जाना चाहते हैं और मुल्क वाले कहते हैं कि सारा माल इधर दे दो तो जाने देंगे, कहा ले लो ये पकड़ो। जब मदीना पहुँचे तो कुछ भी पास नहीं था। अल्लाह के नबी को सुनाया कि मैं तो ये करके आ गया हूँ। आपने फरमाया रबी हल बैयु या अबा याह्या, अबा याह्या इनकी कुनियत थी। आपने कहा अबू याह्या ये बै यानी तिजारत ट्रेडिंग कामयाब रही, यानी तूने नफ़े का सौदा किया। हम सब अपने ऊपर लेके सोचे। हम दीन के लिए बहुत कुर्बानियाँ देना चाहते हैं, शर्त यह कि हमारा कुछ जाए ना, कुछ हमारा उसमें रास्ते में लगे ना, लेकिन इन लोगों ने माल जान सब कुर्बान किया। और इन्हीं के बारे में कुरान की आयत है, वमिनन नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, सूरह बकरा की मैं भूल नहीं रही तो 207 नंबर आयत है ये। उससे पीछे ही आयत है, अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन कब्लिकुम। अल्लाह इन लोगों को ज़रबुल मिसल बना देता था ताकि हम जैसे लोग जो बाद में आए वो अपने हालात को देखें कि आज हम इस्लाम पे इतनी बातें करने वाले अमली तौर पे क्या कर सकते हैं। बहरहाल कमज़ोर मुसलमान जो थे वो मक्का में रह चुके थे, मुशरिकीन ने उनको हिजरत से रोका, फिर जाहिर है कि उनका बस अब उन पर ही चलना था, तो प्रोसिक्यूशन की, दीन से रोकने की कोशिश की, दीन बदलने की कोशिश की। इनमें चंद लोग वलीद बिन वलीद, अय्याश बिन अबी रबी, हिशाम बिन आस थे। अल्लाह के नबी सल्लम कुछ अरसा इनके लिए नमाज में कनूते नासला फरमाते रहे। इसका एक ख़ास तरीका होता है, रुकू में जाने से पहले या बाज़ जगह बाद में खड़े होके तो उन पिसे हुए मुसलमानों की मदद और दुश्मनों की तबाही के लिए दुआ की जाती है, गोया कि इसको बददुआ कहते हैं। और जिन कुफार और कुरैश ने इनको रोका था, आपने इन पर बददुआ की, यही कनूत की असल है। फिर बाज़ मुसलमानों ने जुर्रतमंदाना कदम उठाकर इन्हें कुफार की कैद से छुड़ा लिया और ये भी मदीना में आ गए। हत्ता कि एक वाक्य भी आता है रिवायात में, आपने मरसद बिन मरसद नाम के एक शख्स को मक्का में भेजा, बहुत मजबूत सेहतमंद जवान थे। चांद की रातों का एहतमाम किया गया क्योंकि उस वक्त सफ़र में रोशनी की ज़रूरत होती थी। आपने कहा जाओ जो वहाँ पिसे हुए गरीब लोग हैं उनको लेकर आओ, अपनी पुश्त पे लेके आना। मरसद बिन मरसद जब मदीना से मक्का जाते हैं छुपते छुपाते, खैर मक्का में जब पहुँचे तो एक दीवार फलांग रहे थे तो इनको दूर से एक साया नज़र आया। थोड़े से करीब आए तो एक औरत थी, उसने भी इनको पहचान लिया, कहने लगी अहलन व सहलन या मरसद, ओ मरसद आ जाओ, लब्बैक, खुश हो गई। आवाज़ से पहचान गए कि दौरे जाहिलियत की इनकी महबूबा थी, इस्लाम से पहले उससे मोहब्बत करते थे। अब वो औरत वही पुरानी दिल फेंक कैफियत में है, कहती कम बित इंदन लैलन, मरसद आओ हमारे साथ रात गुजारो। कहा क्यों नाक चली जाओ, इन अल्लाह कद हर्रम ज़िना, अल्लाह ने जिना को आराम कर दिया और तेरा मेरा इस तरह तन्हाई में बात करना मुनासिब नहीं। जूं ही उसने ये बात सुनी शोर मचा दिया, ओ बस्ती वालों देखो ये शख्स तुम्हारे कैदी छुड़ा रहा है। याद रखिए जो मोहब्बतें लस्ट पे मबनी होती है ना, जिसके अंदर सिर्फ एक फिक्शन और लव और शैतानी वसवसे होते हैं, वो इसी तरफ आती भी एकदम है और निकल भी दूसरी तरफ से जाती हैं। जिस मोहब्बत में कोई हद टूट जाती है समझे कि वो मोहब्बत नहीं बल्कि लस्ट है। बचते बचाते जान छुड़ाकर मरसद वापस आए। आज देखिए कि मरसद का अगर किरदार यहाँ लेके देखे, कितने उजर मौजूद थे उनके पास, अपने मुल्क से दूर दुश्मन मुल्क में औरत बुला रही है, ये पहल नहीं कर रहे, पकड़े जाने का डर हो सकता है, दौरे जाहिलियत की महबूबा भी थी, बल्कि बाज़ रिवायत में आता है कि जाके इन्होंने अल्लाह के नबी से फिर पूछा क्या मैं उनाक से शादी कर सकता हूँ, तो उस पे आयतें उतर गई थी कि नहीं मोमिन और मुशरिक का निकाह नहीं हो सकता। यानी इससे पता चलता है कि दिल में कोई नफरत भी नहीं थी, चांदनी रात है, सेहतमंद है, लेकिन किस चीज़ ने उनको रोका, ये तकवा की दीवारें होती हैं जो इन हदों को पामाल करने से रुकवाती हैं। तो बहरहाल इस तरह से रातों को छुप छुपा कर लोग जाते और कमज़ोर लोगों को छुड़ा कर लाते थे। मुसलमान मदीना में आए, नई जगह थी, थोड़ा सा माहौल का फ़र्क, एटमॉस्फेयर, मौसम का फ़र्क था। मदीना आए तो इनको मक्का याद आने लगा और मदीना में उस वक़्त सबसे ज़्यादा वबाएँ फैलती थी, बुखार होने लगा, मुख्तलिफ बीमारियाँ आ गईं। फिर अल्लाह के नबी ने दुआ की, वो दुआ क्या थी, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीना ता का हब्बिना मक्कता औ अशद्दा, ए अल्लाह हमारे नज़दीक मदीना को इसी तरह महबूब कर दे जैसे मक्का महबूब था और इससे भी ज़्यादा, और मदीना की फ़जा सेहत बख्श बना दे और इसके सा और मुत गले के दो पैमाने इनमें बरकत दे और इसका बुखार मुंतकिल करके जुहफा पहुँचा दे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की ये दुआ सुन ली और मुसलमान ठीक हो गए और इनको फिर मदीना महबूब हो गया। इससे क्या पता चलता है कि किसी भी जगह में जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, घबरा नहीं जाना चाहिए। वेदर चेंज, मसा आप इल्म हासिल करने किसी मुल्क में गए, दूसरी जगह गए, कुछ कुछ मुश्किलात तो आएंगी, तो बस थोड़ा सा सुकून लीजिए, वक्त रहेगा इंशाल्लाह ताला वो चीज़ भी आपकी हट जाएगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अल्लाह के नबी अब अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह पे आ गए हैं और इस पूरे किस्से में हमने जो चीज़ें पढ़ी, इसमें चंद चीज़ें बीच में मैंने इसलिए नहीं रोका कि तसलसल भी टूट जाता है, लेकिन उसमें से चीदा चीदा चीज़ों को हम हाईलाइट करके अब आगे अगले हिस्से में जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आकर काम क्या किए। पहली बात इसमें देखिए कि इस हिस्से में जो हमारे थोड़े से गौर व फिक्र की है, बल्कि आप भी सोचा करें इन चीज़ों को लेते हुए कि हमें इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पहली बात है कि मुसलमानों ने मक्का छोड़ा, मदीना गए, सैर व तफरीह के लिए नहीं गए, दीन के मकसद के लिए गए, और ख़ानदान को छोड़कर बिल्कुल ऐसे मुल्क में चले गए जहाँ ख़ानदान का एक बंदा भी नहीं था। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जब बंदे को अल्लाह के दीन से मोहब्बत होती है ना, तो वो घर, ख़ानदान, बिरादरी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर वो फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के लिए करता है जहाँ उसके लिए दीन को फ़ायदा मिलता है। माल के लिए नहीं गए, वक्ती तौर पे आप आगे भी पढ़ेंगे कि उनका माल ख़त्म हो गया था, कोई कारोबार नहीं, कोई तिजारत नहीं है, मुशक्क़तें भी थी, दुश्मनियाँ भी थी। ऐसे वक्तों में जो लोग काम कर जाते हैं, अल्लाह ताला फिर उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है और उनके साथ अल्लाह ताला का मामला भी अच्छा होता है। दूसरी बात इसमें आप देखिएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घराना, खुद तो बूढ़े थे ना, चलिए हम कह लेते हैं बाप तो इस उम्र में आके संजीदा होते हैं, लेकिन उनके बच्चों के किरदार पे बात करने की ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन में किस तरह से शरीक भी थे। ख़ास तौर पे आप देखिए कि बेटी और बेटा दोनों ने किस तरीके से इस मौके पे अल्लाह के नबी का और अपने बाप का इन्होंने साथ दिया, और अल्लाह ताला ने इसका फल उनको क्या दिया, इसके बारे में आप देखिए कि जो अब्दुल्ला थे हज़रत अबू बकर के बेटे, अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको एक ऑनर दिलवाई थी, और वो क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना कुर्ता दे दिया था, और ये उस कुर्ते को कहते थे कि मुझे इसमें कफनाना। एक ऑनर मिली अपने लिए, लेकिन बाद में उसको फिर सदका भी कर दिया। क्यों? लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जो मनपसंद चीज़ होती है उसी को इंसान दूसरे को भी दे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, जवानों को दीन के कामों में लाना, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है वो लोग जो जवानी में इबादत करते हैं। फिर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने अल्लाह के नबी को खाना देने के लिए जाना चाहा तो उनके पास रस्सी नहीं थी, तो उन्होंने अपने सर के कपड़े को दो हिस्सों में बांधा, तो वो एक जैसे पटका सा बांध के नीचे बांध लेते हैं, उस तरह बांध के खाना लेके गई, उसकी वजह से उनको ज़ातनतकैन का लक़ब मिला, यानी उनकी कुर्बानी थी तो अल्लाह ताला ने उनके साथ थोड़ा यानी खूबसूरती का मामला किया। फिर मैंने आपको बीच में एक रिवायत सुनाई कि वो जो पत्थर छोड़ गए और उनको देखा तो वो क्या है, तो ये रिवायत मुस्नद अहमद की थी, 26957 नंबर की। अल्फाज का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैंने आपके साथ सिर्फ खुलासा रखा था। अब्दुल्ला बिन अबू बकर के बारे में एक रिवायत सुन लें कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारा रब उस नौजवान से बहुत खुश होता है जिसकी जवानी में नादानी नहीं होती। सब यंग बच्चियां ये हदीस लिखें, अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जिसकी जवानी में नादानी नहीं होती। याद रखिए, जवानी में नादानियां करने को दिल ही बड़ा चाहता है, एडवेंचर के नाम पे, एक्साइटमेंट के नाम पे, और कभी ख़ुद को ज़्यादा समझदार समझने के नाम पे, तो उस वक़्त इस हदीस को समझने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लम को यमनी हुल्ले में लपेटा गया जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर का था, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतारा गया और आपको 3 सहवली यानी यमनी कपड़ों में कफन दिया गया, इनमें उमामा और कमीज ना थी। हज़रत अब्दुल्ला ने वो हुल्ला उठाया और कहने लगे मुझे इसमें कफन दिया जाए, फिर फरमाने लगे जिसमें अल्लाह के नबी को कफन नहीं दिया गया तो मुझे इसका कफन दिया जाए, फिर इसको खैरात कर दिया। ये जो हदीस शेयर की थी ये सही मुस्लिम की 2223 नंबर की रिवायत थी। फिर इसी तरह आमिर बिन फुखैरा अबू बकर का ग़ुलाम था, वो भी दीन में शामिल है। यहाँ से पता चलता है कि हमें अपने घर के मुलाजिमों को भी नेकी के कामों में शामिल रखना चाहिए, और ये जो थे पुराने गुलाम थे घर के, और अल्लाह ताला ने इनको भी ये बहुत कुछ दिया। मैं आपको सुनाती हूँ, आप इनके बारे में एक बड़ा खूबसूरत वाक्या सुनेंगे। आमिर बिन फुहैरा अब्दुल्ला बिन तुफैल के गुलाम थे, और अब्दुल्ला हज़रत आयशा की वालदा की तरफ से भाई थे। हज़रत अबू बकर के पास दूध देने वाली एक ऊँटनी थी, तो आमिर बिन फुहैरा इसे चराने के लिए ले जाते और रात नबी सल्लम और अबू बकर के पास आते और फिर चराने के लिए रवाना हो जाते। इस तरह कोई चरवाहा इस रात से आगाह ना हो सका। जब नबी सल्लम और अबू बकर इस गार से निकल कर रवाना हो गए तो पीछे पीछे आमिर बिन फुहैरा भी पहुँचे। कहाँ क्या हुआ इनके साथ बाद में? आमिर बिन फुहैरा बैरे मऊना के दिन शहीद हुए। एक जंग हुई थी, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अबू उसामा से रिवायत है, यानी अबू उसामा रिवायत करते हैं कि हिशाम बिन उरवा ने कहा कि मेरे वालिद ने मुझसे बयान किया कि जब आमिर बिन फुखैरा बैरे मऊना वाले दिन शहीद किए गए और अमर बिन उमैया जमरी कैद किए गए, तो आमिर बिन तुफैल ने इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये आमिर बिन फुहैरा है। आमिर बिन तुफैल कहते हैं कि जब ये शहीद हुए तो इनकी लाश आसमान पर उठाई गई। ये चीज़ सुनाने के लिए इतनी तवील रिवायत आपको सुनाई है। मैंने देखा कि आसमान और ज़मीन के दरमियान मौलक है, फिर ज़मीन पर रख दी गई। अल्लाह के नबी सल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े की ख़बर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम से फ़रमाया, तुम्हारे भाई शहीद किए गए, और उन्होंने शहादत के बाद अपने रब के हजूर अर्ज़ की, ए हमारे रब, हमारी खबर हमारे भाइयों को कर दे कि हम तुझसे राज़ी हुए और तू हमसे खुश हुआ। अल्लाह ने उनकी खबर मुसलमानों को पहुंचा दी। ये सही बुखारी की रिवायत 4093 है। कभी सुनी थी आपने पहले आज तक? हदीस नहीं पढ़ते ना तो इसका यही नुकसान है, फिक्शन से ज़्यादा हदीस पढ़ा करें। फालतू वक्त ज़रा आपको कोई मिले तो उसमें कोई हदीस की किताब लें, या यहाँ छोटी छोटी किताबें हैं जिसको हदीस की बुनियाद पर कंपाइल किया गया, अपना मुताला वसी करें। अगर आप अपनी सोच बढ़ाना चाहते हैं किस तरह अल्लाह ताला दुनिया में कुर्बानियाँ देने वालों को दुनिया में ही नुमाया कर देता है कि अल्लाह उनके हाल से किस तरह खुश है और किस तरह से उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया और अल्लाह ने उनका हक नहीं रखा। और सुराका बिन मालिक पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, किस तरह अल्लाह शर में से खैर निकालता है। जान लेने आए थे और ईमान मिल गया उनको। कभी भी ना सोचिए कि कोई शख्स हिदायत से दूर है तो हमेशा ही दूर रहेगा। कहते हैं कि इस्लाम जब लाए तो अल्लाह के नबी की वफ़ात तक इन्होंने आपका साथ ना छोड़ा। जब अल्लाह के नबी के मरज़ुल वफ़ात का सिलसिला जारी था तो ये आपके पास आए। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल पूछना शुरू कर दिए। यहाँ से सहाबा का मिजाज देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, मौत के आसार हैं, और सहाबा आके उनसे इल्म सीख रहे हैं। हत्ता के कहते हैं मेरे पास सवालात ख़त्म हो गए, यानी सारे सवाल पूछ लिए। आपने फरमाया कुछ और याद कर लो, और सवालात में से एक सवाल मैंने ये भी पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भटके हुए ऊँट जो मेरे हौज़ पर आए तो क्या मुझे इनको पानी पिलाने पर अजर व सवाब, यानी एक हौज़ बनाया हुआ पानी का, तो मेरे ऊँट तो पीते हैं, कभी कोई बेचारे ऐसे इधर उधर से आते हुए ऊँट आते हैं तो पानी पीते हैं, तो क्या उनके पानी पीने का मुझे अजर मिलेगा? तो आपने फरमाया, हाँ, हर तर जिगर रखने वाले में अजर व सवाब है, कि यानी अगर जानवर भी कोई खाता पीता है हमारे खाने पीने में, उसका भी हमें अजर मिलेगा। ये मुसनद अहमद 17587 नंबर की रिवायत है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि अल्लाह सुबहाना ताला किस तरह मुख्तलिफ बातें करते हैं। फिर बीच में मैंने एक रेफरेंस हल्की सी बात अपने लफ्ज़ों में की थी कि एक शख्स ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है, तो आपने कहा कि ये मेरे हादी हैं। तो ये रिवायत सही बुखारी की 3911 नंबर की है। अल्फाज जाके आप ख़ुद पढ़िए, ख़ुद देखिए। और मदीना के लोग अल्लाह के नबी के आने पर किस तरह खुश थे। हज़रत अनस कहते हैं, मैंने वो दिन पाया है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए, उस दिन से ज़्यादा रोशन और हसीन दिन कोई नहीं देखा। यानी मदीना की हिस्ट्री में सबसे खूबसूरत दिन अल्लाह के नबी की आमद का दिन था, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन भी पाया है, और उस दिन से ज़्यादा तारीख और कभी दिन कोई नहीं देखा। कि उस दिन तो ऐसे लग रहा था कि मदीना की गलियां भी रो रही हैं। हम पढ़ेंगे जब इसका आखिरी टॉपिक, तो हम खुद भी देखेंगे, दिल रोने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लम की आमद पर हबशियों ने खुशी से नेज़ों के साथ खेल खेला। ये भी रिवायत मुसनद अहमद 12649 नंबर की हमें मिलती है। तो बहरहाल आप इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए देखिए कि अल्लाह के नबी का मदीना में आना कितना ज़्यादा खूबसूरत नतायज लेकर आया। अब इसके बाद अगला मरहला शुरू होगा, मैं इसको यहीं पर रोकती हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।